नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद बढ़ते संघर्ष के बीच सरकार ने 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। चीन ने हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। और हांगकांग में वर्ल्ड स्क्वाश टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा रूस के साथ रहा है और भविष्य में भी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के मजबूत मैत्री संबंधों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के विभिन्न पक्षों पर बातचीत की। श्री सिंह ने दोनों देशों के बीच साझेदारी और समन्वित प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम हासिल होने की आशा व्यक्त की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बिलोसोव के साथ सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री सिंह ने कहा कि भारत और रूस के संबंध बहुत ही सशक्त हैं और दोनों देशों ने विशिष्ट रणनीतिक भागीदारी के दायित्व तो निभाए हैं। श्री सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्राओं से ये संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं। सरकार ने सीरिया में हाल के घटनाक्रम के बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं जो सैदा जैनब में फंसे थे। इन सभी भारतीय नागरिकों को लेबनान पहुंचाया गया है जहां से वे भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से सुरक्षित निकासी संभव हुई। सीरिया में भारतीय नागरिकों ने सरकार से उन्हें सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सीरिया में रह रहे भारतीयों को आपात हेल्पलाइन नंबर 9639933853 और ईमेल आईडी hoc.damascus@mea.gov.in पर दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। भारत सरकार सीरिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। इस बीच इसराइल के लड़ाकू विमानों ने कल सीरिया के सैन्य ठिकानों और कथित रूप से रासायनिक हथियार विनिर्माण अनुसंधान केंद्र पर कई हमले किए। सीरिया में मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। टेलीविजन पर एक बयान में श्री बशीर ने कहा कि वे अगले वर्ष 1 मार्च तक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। उन्हें कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने वाले विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त है। दमिश्क में 12 दिनों की आक्रामक कार्रवाई के पहले अल बशीर ने विद्रोहियों की मुक्ति सरकार का संचालन किया था। चीन ने हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की घोषणा के जवाब में यह फैसला किया गया है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओनिंग ने बीजिंग में कल यह घोषणा की। माओनिंग ने कहा कि अमेरिका ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्यप्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने आवास पर महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जारी करेंगे। श्री भारती के लेखन ने लोगों में देशभक्ति की भावना और भारतीय संस्कृति तथा देश की आध्यात्मिक विरासत को आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी संपूर्ण रचनाओं का 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के फाइनल में युवा नवाचारियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के 51 केंद्रों में आयोजित इस 7वें हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। फाइनल में विद्यार्थियों की 1300 से अधिक टीमें भाग लेंगी। एक रिपोर्ट।
स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन दैनिक जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान का मंच उपलब्ध कराने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके माध्यम से चुनौतियों के नवाचारी समाधान की क्षमता विकसित होती है। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक साथ इन 51 केंद्रों पर हैकेथॉन का आयोजन कर रही है। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण सौंपे गए हैं। स्थान स्तर पर 86,000 टीमों ने हैकेथॉन में भागीदारी की और इन संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए लगभग 49,000 विद्यार्थियों की टीमों की अनुशंसा की गई। समाचार कक्ष से जया भारती।
हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ ही देर में शुरू हो रहे 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कर रहे हैं। देशभर के 57 टीम के लगभग 400 भागीदार हैकाथॉन के 36 घंटे लंबे सॉफ्टवेयर सत्र में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर आज सुबह शुरू हो रहे 2 दिन के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कर रहा है। NIT श्रीनगर में ग्रैंड फिनाले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 1 घंटे का उद्घाटन सत्र आज सुबह शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में आज गीता जयंती पर गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत पहली बार 5,000 से अधिक आचार्य श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग का पाठ करेंगे।
प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5,000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से उनके मुखारिंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
प्रदेश सरकार 8 से 12 दिसंबर तक गीता महोत्सव मना रही है। मध्य प्रदेश में आज से अगले वर्ष 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी केंद्रित योजनाओं से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि युवा, नारी, किसान और गरीब के कल्याण और विकास के लिए जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा।
हमने 2 प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व से मनाने का प्रयास किया है। लगातार 40 दिन तक जनता के बीच जाकर के जो वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है।
अभियान के अंतर्गत जन कल्याण पर्व में विभिन्न विभागों की गतिविधियों और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। साथ ही राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अभियान में 34 हितग्राही मूलक, 11 लक्ष्य आधारित और 63 अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है। अभियान की गतिविधियों की CM हेल्पलाइन डैशबोर्ड पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
जयपुर में राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। समापन सत्र से पहले आज सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन आयोजित होगा। 3 दिन के इस निवेश सम्मेलन में लगभग 35 देशों के 5,000 से अधिक निवेशकों, व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। बृहन्न मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम बेस्ट ने पूर्वी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र कोरला में हुई बस दुर्घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की समिति गठित की है। समिति जांच में हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाएगी। सोमवार शाम को हुई बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 42 घायल हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं अभिषेक कपिल।
वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे हांगकांग में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने कल इटली को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से होगा। यह मैच 12:00 बजे से शुरू होगा। उधर फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश आज सिंगापुर में मौजूदा चैंपियन डिंग लिजेन के साथ 13वीं बाजी खेलेंगे। यह मुकाबला 2:30 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:50 से शुरू होगा। वहीं बैडमिंटन में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी आज से चीन के हांगचाऊ में शुरू हो रहे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में देश का प्रतिनिधित्व करेगी।
मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 के स्तर पर दर्ज किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद विशाल। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 60 सांसदों ने किए दस्तखत। वहीं नवभारत टाइम्स ने विपक्ष के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को दिया है, कांग्रेस नेतृत्व और अमरीकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की साठगांठ के खुलासे से विपक्ष बौखलाया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की 2,565 करोड़ की संपत्ति बेची जाएगी, राजस्थान पत्रिका के अनुसार विशेष पीएमएलए अदालत ने दी अनुमति। विश्वविद्यालयों दाखिलों में पेशेवर अनुभव को मिलेगी तरजीह, राष्ट्रीय सहारा ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, अब कार्य अनुभव का लाभ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय आएगा काम। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, हिंदुस्तान के अनुसार उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के लिए दिए निर्देश।
धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद बढ़ते संघर्ष के बीच सरकार ने 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। चीन ने हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी और हांगकांग में वर्ल्ड स्क्वाश टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।